आइए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक रितेश शाह के साथ। रितेश शाह को फिल्म पिंक के डायलॉग्स के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें स्टार स्क्रीन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म पिंक की कहानी के लिए वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी हुए। रितेश शाह की और भी कई फिल्में हैं। वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे तो उनसे मिलने और बात करने का मौका मिला, तो लीजिए प्रस्तुत है वही बातचीत। रितेश जी, आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा यही सवाल, और शायद आपको लगेगा कि बार बार मुझे वही बात बतानी पड़ती है कि पिंक, जिसने एक मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है, और ये ऐसा एक विषय है जो शायद हम कहीं सोचते हैं लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो कैसे हुआ ये सब?
एग्जैक्टली वही हुआ कि एक ऐसी बात थी जो हम सारे सोचते हैं और बोलते नहीं
जी,
और हम बोलना चाह रहे थे बहुत दिनों से, दिमाग में तो था, मौका नहीं मिल रहा था। करीब 3-3.5 साल से स्क्रिप्ट लेके हम घूम रहे हैं
जी,
और कहीं मेन स्ट्रीम स्टूडियो से हमें सपोर्ट नहीं मिला, तो इवेंचुअली रश्मि शर्मा, जो खुद एक औरत हैं, तो वो एज अ प्रोड्यूसर आई और उन्होंने हमको सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में ये बात अब कहने की का टाइम आ चुका था, और वो शायद कोई भी हो सकता था, हो सकता है हमसे ज्यादा रिफाइंड होता, बट वो एक्चुअली पिक्चर या कहानी नहीं है या उसमें डायलॉग नहीं है, मोस्टली एक एको है आप ही की फीलिंग्स का, मतलब देखने वालों की फीलिंग्स का एको ज़्यादा है और उसमें हमारी राइटिंग या क्राफ्ट का रोल कम है। एक्चुअली आप ये सोचिए कि हमारी कलेक्टिव सोच, हमारी कलेक्टिव आवाज़ है और इसीलिए शायद वो ज़्यादा उसका असर रहा है लोगों पर।
कई तीखे उसमें सवाल हैं, कई तीखे डायलॉग्स हैं, और बिल्कुल कहना चाहिए कि तीर की तरह बात आती है और आपके दिल को छू जाती है। जैसे कि आपने कहा कि ना, ना का मतलब ना ही होता है, हमारी कहीं पे ना में से हाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं, वो अभी तक एक सवाल बना हुआ है। तो उसी सिलसिले में एक पूछना चाहूंगी कि लोग ये भी बोलते हैं कि एक राइटर्स ब्लॉक होता है, कभी कभी आप जो लिखना चाह रहे हैं आ ही नहीं रहा, तो एज ए राइटर आपको भी लगता है ऐसा कुछ होता है?
बहुत बार क्या होता है कि आलस होता है बहुत बार होता है डर कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ
जी,
हेजिटेशन होती है, बहुत सारी चीजें मिलके एक ब्लॉक क्रिएट करती हैं। बट राइटिंग में ब्लॉक निकालने का सबसे आसान तरीका ही है कि जबरदस्ती लिखिए, हो सकता है शुरू में खराब आए, वो बात ना बने, बट अगर आपके अंदर सब्जेक्ट को लेके ईमानदारी है तो धीरे धीरे उन ब्लॉक्स को फाइट करते हुए आपकी राइटिंग निकलेगी। पिंक का भी एक बहुत ही लेबोरियस राइटिंग प्रोसेस रहा है और इसमें कई दिमाग और कई दिल जुड़े हैं, बट इवेंचुअली अगर आपकी बात में वजन है, दम है, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज ही निकालेगी उस ब्लॉक को हटाते हुए।
क्या बात है, वही जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें, उनसे लड़ाई करनी है, और ये शायद काम है राइटर की कलम का।
बिल्कुल, वो बैटल आपको लड़ना ही पड़ेगा, बिना लिखे लिखना होता ही नहीं है
जी। कहते हैं फिल्में जो हैं वो समाज का दर्पण हैं, और ये जिम्मेदारी होती है राइटर के कंधे पे। इसके बावजूद कई बार समाज का दर्पण बनते बनते फिल्में जो हैं वो एक ढर्रे में ढल जाती हैं। आजकल जो फिल्में आ रही हैं उसमें एक बहुत ही असमंजस की स्थिति है, एक तलाश चल रही है। ये जो तलाश है, ये बनाई हुई तलाश है या सच में तलाश है और हम वाकई कहीं कंफ्यूज हैं?
नहीं, मैं समझ रहा हूँ, शायद हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है एक ट्रांजिशन के फेज में है
जी।
एक रूरल सोसाइटी मेल्ट होके अर्बन में तब्दील होना चाहती है, ख्वाहिश रखती है, रूटेड कहीं और से है। सिनेमा में काम करने वाले अब कुछ ऐसे लोग जैसे कि मैं, जो पहले कभी यहाँ काम कर ही नहीं सकते थे या कर ही नहीं पाते, आ रहे हैं, तो अलग अलग सोच लेके एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से एक फॉर्मूला, एक फिल्म का जो मतलब जिसको आपने कहा एक ढर्रा सा बन गया जिसमें लोग फंसे हुए हैं, उससे भी निकलना चाहते हैं, तो एक वो असमंजस का फेज तो है और जेन्युइनली है और फिल्में शायद इसलिए उसको रिफ्लेक्ट भी करती हैं। बट मुझे लगता है कि साल 2014 से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कामयाब फिल्में वही रही हैं जिसमें एक नई सोच, एक नई बात, एक नया अंदाज रहा है, चाहे वो क्वीन हो, NH10 हो, कहानी हो, ऐसी बहुत सारी फिल्मों को खुद ऑडियंस ने ही सपोर्ट किया है जिनमें बड़े कलाकार तो नहीं थे
जी,
बट उस सोच को शायद ऑडियंस ही एनकरेज कर रही है क्योंकि ऑडियंस भी बदल रही है। तो जितना ऑडियंस बदलेगी, जितना एनकरेजमेंट उनकी तरफ से आएगा, उतनी ही हमारी हिंदी फिल्में इम्प्रूव होंगी।
और उसमें कहीं लेखक की जिम्मेदारी भी शामिल है कि क्या कहानियां नहीं लिखी जा रही, या कहीं प्रोड्यूसर ही हैं कि वो डरते हैं उन कहानियों पे काम करने के लिए? कुछ प्रोड्यूसर्स,
मेरे लिए तो बहुत आसान है कि सारा जिम्मा मैं प्रोड्यूसर्स के कंधों पे ही डाल दूं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर एज राइटर्स भी हमने उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया है, हो सकता है हमारी उसमें कुछ मजबूरियां रही हो, बट लार्जली अपने आंख और कान अगर आप खुले रख रहे हैं तो आपको जो समाज की आवाज है वो सुननी ही पड़ेगी और वही अपने पेन से एक्सप्रेस करनी पड़ेगी
जी।
अब वो आप कितनी अच्छी तरीके से करते हैं उससे बाकी लोग भी एनकरेज होंगे। जैसे कि पिंक में एक मुद्दा है, एयरलिफ्ट में इस तरह का फेक पैट्रियोटिज्म को अवॉइड करते हुए कि हिंदुस्तानी, सही हिंदुस्तानी की पहचान यह है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचे। अब जब ये फिल्में कमर्शियली चलती हैं और अगर आपने जरा सी भी ढंग की लिखी तो वो इस तरह के और सिनेमा को एनकरेज करती हैं। तो किसी न किसी हद तक अगर प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब जब हमें ऐसा मौका मिले तो हम इतना अच्छा काम करें कि आगे प्रोड्यूसर रुकावट ना बने राइटर के लिए।
जी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ध्यान अभी तक नहीं जा रहा है, जेंडर्ड इनफिडेलिटी के ऊपर। कहा जाता है कि हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जबकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसके ऊपर अभी तक कोई साहसपूर्ण काम नहीं हुआ है, क्योंकि समय तो बदल रहा है।
समय बदल रहा है और जैसे ही आपने डिमांड पेश की तो आप यही सोचे कि जैसी आपकी सोच है, जैसा वक्त आया, वक्त बदलता है, वो कहानी जरूर आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी, क्यों सवाल उठ चुका है। कहीं ना कहीं राइटर्स के कान आंख ये खुले रहते हैं
जी।
वो एक नई ऑडियंस की हार्ट बीट सुन लेते हैं। जैसे आपने आज ये बात कही और कल हम ये आइडिया डिस्कस कर रहे थे, तो जल्द ही आपको ये
कहीं कोई बात आएगी।
ये जो हमारी हिपोक्रेसी है
जी,
कि एक चीज को इग्नोर करने की और दूसरे जेंडर में उसी चीज को एक्सेप्ट करने की, तो मुझे लगता है कि जल्द ही आपको इस पे अच्छा काम देखने को मिलेगा। एक तरह से मर्द की लीला को सेलिब्रेट किया गया है
जी,
और औरतों के केस में किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में या किसी भी पॉपुलर कल्चर की इसकी कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। फीमेल सेक्सुअलिटी की ही आप अगर बात करें तो, पर चूंकि वक्त बदल रहा है तो ये कहानियां पैदा होंगी और मुझे लगता है कि बहुत ही अनबायस तरीके से बिना डरे कही जाएंगी, क्योंकि अगर आपके दिल में ये सवाल है तो मेरे दिल में भी है
जी।
तो मैं यही समझता हूँ जब कहानी का वक्त आता है कहीं ना कहीं से वो कलम पैदा हो ही जाती है
जी। हर बार औरत अहिल्या नहीं बनेगी
जी, औरत बदल रही है तो उसकी कहानी भी बदलेगी ना
जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके रितेश जी, और आपने जो समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट भी किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपको।
थैंक यू फॉर हैविंग मी।